الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम सूरह मायदा की तफसीर पढ़ रहे हैं और आयत नंबर 2 ही पर हम हैं पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, और इसकी तफसीर में हम सफ़ा नंबर 24 पर पिछली क्लास में पहुंच गए थे। तो इस आयत नंबर 2 का जो हिस्सा चल रहा है वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वताआवनु अलल बिर्रि वत्तक्वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान, और अल्लाह ताला से डरो वत्तकुल्लाह। तो इसकी तफसीर में आखिरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि सही बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसुर अखा का ज़ालिमन औ मज़लूमन, यानी अपने भाई की मदद करो ख्वाह वो ज़ालिम हो या मज़लूम। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाईन जो कुरानी तालीम में रंगे जा चुके थे, उन्होंने हैरत से पूछा, यानी उनका तो जहन बन चुका था कि जालिम की मदद नहीं करनी, जिसने जुल्म किया है उसकी मदद नहीं करनी है, जहन बन चुका था उनका, बिल्कुल क्लियर हो चुके थे इस बारे में, क्योंकि पहले ये ऐसी गलतियां करते थे इस्लाम से पहले, ठीक है, जालिम की भी मदद करते थे असबियत की वजह से, क्योंकि वो उनके कबीले का होता था, उनके खानदान का होता था, तो इस बुनियाद पर वो जालिम की भी मदद किया करते थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बाद उन्होंने बात मान ली थी और बिल्कुल 100% पक्के हो गए थे कि जालिम की मदद नहीं करनी है। तो अब नबी अलैहिस्सलाम से ऐसी बात सुन करके हैरान रह गए और इल्म तालिब इल्माना सवाल किया, चुप नहीं होकर के रह गए बल्कि बात समझ में नहीं आ रही थी, तो अल्लाह के रसूल से पूछ रहे हैं कि क्या मतलब है आपका जो आप जालिम की मदद के लिए कह रहे हैं। तो हम इससे क्या सीखते हैं कि हमने सवाल करना है, बात को समझना है, गौर से सुनना है। अगर बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना गुम हालत में बिल्कुल बेतवज्जुही के साथ बैठे हुए होंगे, ठीक है, और बात ही नहीं सुन रहे होंगे, तो फिर पता ही कुछ नहीं कि क्या बात हो रही है ना, बयान में क्या बात हुई और जो है वो उस्ताद ने क्या कहा, शेख ने क्या कहा, पता ही कुछ नहीं क्या कह रहे हैं, तो सवाल कहाँ से करेंगे। सहाबा कराम ऐसे नहीं थे, सहाबा कराम गौर से सुनते थे और जहन में उसको सोचते थे कि क्या कहा गया है हमसे अभी, हमसे अभी क्या बात की गई है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद जब वो बात क्लियर नहीं हो रही होती थी तो फिर सवाल करते थे उसको क्लियर करने के लिए। क्या हम ऐसा करते हैं? हम तो गौर से सुनते ही नहीं है कि बात जहन में क्लियर हो ना हो, ये तो अगला मरहला है ना, गौर से सुनेंगे तो फिर बात के क्लियर और अनक्लियर होने की बात आएगी। तो फिर उसके बाद अगला मरहला कि भाई सवाल करें अगर बात क्लियर नहीं हो रही है ना, बस दिल के अंदर जो है वो कदूरत लेके बैठ गए, ओ उन्होंने ये क्या गलत बात कर दी, ये क्या इन्होंने जो है वो अपनी बात ही की तरदीद कर दी, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, दिल में कदूरत लेके बैठे हुए, दिल में कीना लेकर के बैठे हुए, बात क्लियर नहीं कर रहे, ये मुनाफिकत की अलामत होती है, ये ईमान वाले की अलामत नहीं होती। ईमान वाला कौन होता है? एतमाद करने वाला, ठीक है ना, तो एतमाद करने वाले के लिए लाजिम है कि वो बात को क्लियर करे, पूछे अगर उसको खुद से बात समझ में नहीं आई है। फसअलू अहल जिक्र, ठीक है, इन कुन तुम ला तालमून, तुम्हें खुद बात समझ में नहीं आ रही तो तुम पूछो, दिल में कीना मत पैदा करो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स मत क्रिएट करो, ठीक है। तो सहाबा कराम ने पूछा, अजम्पशंस की बुनियाद पे लेके नहीं बैठ गए कि हाँ कुछ होगा इसका मतलब, ठीक है, अजम्पशंस नहीं, पूछ लिया, ठीक है। तो क्या टेक होम पॉइंट्स हैं हमारे लिए, लिसन केयरफुली, गेट द पॉइंट क्लियर, राइट, एस्क इफ इट्स नॉट क्लियर, पूछें अगर वो बात क्लियर नहीं है, दिल को खराब मत करें, दिल को गंदा मत करें, ठीक है। और फिर उसके बाद एक बहुत अहम पॉइंट जो कि आज के दौर के एतबार से बहुत ज्यादा अहम है, तो वो आगे करते हैं अभी। उन्होंने हैरत से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम भाई की इमदाद तो हम समझ गए, मगर जालिम की इमदाद का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको जुल्म से रोको, यही उसकी इमदाद। तो पिछली क्लास के अंदर तो हमने बात क्या करी थी, अगर आप में से किसी से पूछें पता चले ना किसने गौर से सुना था और उसको नोट डाउन किया था अपने पास, है, चाहे दिल के सफ़े पे लिखा हो चाहे जो है वो कागज़ के सफ़े पे लिखा हो, क्या बात हुई थी पिछली क्लास में, इससे टेक होम पॉइंट हमने एक और लिया था। आज तो हम और टेक होम पॉइंट्स ले रहे हैं ना, घर ले जाने वाले पॉइंट्स हम और ले रहे हैं, पिछली क्लास में हमने और लिया था, वो क्या था जी? अपने गरेबान में झांक के देखने का मौका मिलना चाहिए ना कि हम कितने पानी में हैं, कितना गौर से सुनते हैं कितना नहीं सुनते हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी इसलाह कर सकें, हम अपनी गलती को जो है वो ठीक कर सकें, ठीक है। इसका इस बात से क्या ताल्लुक है? मैं इस हदीस की बात कर रहा हूं, आप जो है वो जो किसी ने सवाल किया था तो उसके जवाब में जो बात कही थी उसकी आप बात शुरू हो गए, हम तो इस हदीस की बात कर रहे हैं ना, इसमें से क्या टेक होम पॉइंट किया था, ठीक है। गुनाह इज जुल्म, चलें आधी बात तो आपने बता दी अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी बात क्या थी कि जुल्म का मतलब सजा है, जुल्म का मतलब सजा है, ठीक है ना, लाजिमन अगर जुल्म करेगा तो बर्बाद करेगा अपने आप को, सजा पाएगा, ये नहीं हो सकता कि जुल्म करेगा और सजा से बच जाए। नबी अलैहिस्सलाम इसी बात को समझा रहे हैं कि देखो तुम्हारा भाई अगर जुल्म कर रहा है तो ये मत समझना कि इसको सजा नहीं मिलेगी, ये मत समझना कि इसको सजा नहीं मिलेगी, इस वजह से कुछ नहीं होता, लेट हिम बी, लेट हिम डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, लिव एंड लेट लिव, जिसको कहते हैं ना आजकल वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, लिव एंड लेट लिव, क्या मतलब कि खुद भी गुनाह करो और दूसरों को भी गुनाह करने दो, खुद भी जुल्म करो और दूसरों को भी जुल्म करने दो, ये लिव एंड लेट लिव का ये मतलब बनाया गया आजकल, नहीं, तुम खुद गुनाह करोगे तुम खुद भी बर्बाद होगे, दूसरा कोई गुनाह करेगा वो भी बर्बाद होगा, ये है इसका मतलब, ये टेक होम पॉइंट था पिछली क्लास के अंदर इस हदीस से रिलेटेड, हाउ टू रिकॉग्नाइज मुत्तकी, ये तो आपके सवाल के जवाब में था, जो आपने सवाल किया था वो तो वो अलग बात थी ना, वो तो अलग डिस्कशन हो रही थी, और ये सन्यासी बाबा वाले भी अलग डिस्कशन हो रही थी ना, ठीक है। तो अब आज जो टेक होम पॉइंट्स लिए हैं वो लिखे हैं किसी ने कि गौर से सुनना है जो बात की जा रही है, गौर से सुनना है और उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, और तीसरी क्या बात है, अगर समझ में नहीं आ रहा पूछना है, अगर समझ में नहीं आ रहा पूछना है, 1 2 3, व्हाट वाज द फोर्थ वन, चौथी बात क्या थी जी, चौथी बात क्या थी अभी थोड़ी देर पहले जो बताई गई थी, गौर से सुनना, समझने की कोशिश करना और अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछना, चौथी बात क्या थी जी, दिल में कदूरत नहीं पैदा करना, कीना नहीं पैदा करना स्पीकर के बारे में, अपने शेख के बारे में, अपने उस्ताद के बारे में, नॉट जस्ट एनी स्पीकर, यूट्यूब के ऊपर कोई स्पीकर सुने चले जा रहे हैं राइट, उसकी बात नहीं कर रहे, अपने उस्ताद की बात कर रहे हैं, अपने उस्ताद के बारे में दिल में कीना नहीं पैदा करना है, शेख के बारे में दिल में कीना नहीं पैदा करना है कि पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, क्लियर करें भाई अगर बात समझ में नहीं आ रही तो। फोर टेक होम पॉइंट्स ऑलरेडी डन, व्हाट इज द फिफ्थ वन? पांचवा टेक होम पॉइंट क्या है इसके अंदर? पांचवा आज के जमाने के हिसाब से क्या है कि जो फरमाया ना, उनसुर अखा का जालिमन औ मजलूमन, कि अपने भाई की मदद करो कि वो जालिम है या मजलूम है। आज के एतबार से इसके अंदर एक और चीज ऐड करें, वो क्या कि क्या वो वाकई जालिम है या नहीं है, क्या वो वाकई मजलूम है या नहीं है, इसको वेरीफाई करना होगा। ये मीडिया के ऊपर देख करके जो हम तय कर लेते हैं ना, किसी को जालिम तय कर लेते हैं, किसी को मजलूम तय कर लेते हैं, वाई? बिकॉज मीडिया में लोग आकर के बोले चले जा रहे हैं उसको जालिम, इस वजह से वो जालिम है। ये मीडिया में लोग बोले चले जा रहे हैं ये मजलूम है, ये मजलूम है, ये मजलूम है, और बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, तो हमने भी मान लिया हाँ भाई ये मजलूम है। नहीं, ऐसे नहीं किसी के जुल्म का या किसी की मजलूमियत का फैसला करना है, ठीक है ना? ये मीडिया जो है ये फिस्क फुजूर से लबालब भरा हुआ है। ये मीडिया और मीडिया पे आने वाले अक्सर लोग, सारे बेशक नहीं, लेकिन अक्सर लोग ये फिस्क और फुजूर, धोखा, गुनाह, डिसेप्शन, ये इनसे लबालब भरे हुए लोग होते हैं। ये नेकोकार नहीं होते, ये मुत्तकी परहेजगार नहीं होते, जो कि मीडिया पे आकर के टॉक शोज के अंदर या जो है वो लेक्चर्स के अंदर आकर के बातें करते हैं। ये नहीं होते ऐसे नेक लोग। और जो नेक होते भी हैं ना, जो वाकई नेक होते भी हैं और आपको मीडिया पे नजर आ रहे हैं, उनके बारे में आप बताएं, उनके बारे में क्या होता है? एक तो नेक लोग आते नहीं है मीडिया के ऊपर, ठीक है, तो उनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता जब तक आप तहकीक ना कर लें। इन जा अकुम फासिकुम फतबयन, जब तुम्हारे पास कोई फासिक जो है वो खबर लेकर के आए, बिनबइन फतबयन, कोई खबर लेकर के आए तो उसकी तुम तहकीक करो, मान मत लो उसकी बात को, ठीक है ना? तो मीडिया जो है वो प्रीटी मच 98%, 99% फिस्को फुजूर से भरा हुआ है। कैसे हम उसकी बात मान लेते हैं? और तहकीक करें भी तो कैसे करें? हम हमारे पास तहकीक के रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं हमारे पास तहकीक के, हम जाकर के तहकीक करते फिरें कि वो मीडिया के अंदर क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, गलत बोल रहा है? तहकीक के हमारे पास वसाइल ही नहीं है। झूठ है ये कि सोशल मीडिया जो है ना ये इंडिपेंडेंट मीडिया, बिल्कुल इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है ये। इसमें इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर PhDs करी हुई होती हैं, और इन्होंने इंसानों को घुमाने का जो है ना वो फन बाकायदा सीखा हुआ होता है। तो सोशल मीडिया भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द मीडिया। तो ये तो फिस्को फुजूर से भरा हुआ मीडिया है, इसके अंदर वो किसी को जालिम बोल रहा है तो कुछ पता नहीं है कि वो जालिम है कि नहीं है, वो मजलूम बोल रहा है तो कुछ पता नहीं है कि वो मजलूम है कि नहीं है। तो ये तो हो गया फिस्को फुजूर वालों की बात। अब एक सवाल आपसे ये किया है कि जो नेक लोग मीडिया पर होते हैं, व्हाट इज देयर रियलिटी? वो जो मीडिया पर आकर कहते हैं उसकी क्या हकीकत है? जी, उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, जवाब दें इसका। जो नेक लोग, जिनको हम जानते हैं कि हाँ वो नेक लोग हैं, अगर वो मीडिया पर आते हैं तो फिर हमें उनके साथ क्या मामला करना है, क्या रवैया रखना है उनके साथ, या क्या गुमान रखना है उनके साथ? जी, अगर नेक लोग हैं उनकी बातों की तावील करनी है उनकी बातों की तावील करनी है। अच्छा, सही है, अपने बड़ों से पूछना चाहिए तावील। तो भाई तावील तो उस वक्त करोगे ना जब ठीक है, तावील तो आपने, यानी आपने पॉइंट नंबर टू पहले बता दिया, पॉइंट नंबर वन तो बताएं पहले, पॉइंट नंबर टू पहले बता दिया। तावील करनी चाहिए कि वो बेहतरी के लिए आ रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है, दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स, उनकी तावील करनी है। वाई आर दे प्लेइंग पॉलिटिक्स? सो दे कीप अपीयर, अच्छा गुमान रखना दीन की खातिर, अच्छा गुमान रखना चाहिए। अंडरस्टैंड, दे मे से समथिंग बेस्ड ऑन द क्राउड दैट दे आर स्पीकिंग विद। नहीं, ठीक है, ये बात भी बेहतर जवाब है कि उनके बारे में ये गुमान रखना चाहिए कि वो अपने क्राउड के हिसाब से आके बात कर रहे हैं। लेकिन आपको एक और हकीकत भी याद रखनी चाहिए जो कि बहुत जरूरी है इस वक्त, बहुत जरूरी है इस वक्त अपने ईमान की हिफाजत के लिए, और किसी चीज की हिफाजत के लिए नहीं, अपने ईमान की हिफाजत के लिए इंतहाई जरूरी है इस बात को समझना और याद रखना कि नेक लोग मीडिया पे आकर के पूरा हक बयान नहीं कर सकते। नेक लोग भी मीडिया पे आकर के पूरा हक बयान नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी होती है, जान बचाना फर्ज है, और खामखा में ना बेवकूफों की खातिर अपने आप को कुर्बान कर देना कोई हिकमत नहीं है, कोई इसके अंदर मसलियत नहीं है, कोई इसके अंदर अच्छाई नहीं है। ठीक है, लोगों ने फिर भी नहीं समझना, जो मीडिया से इवेंट, जो मीडिया से खबरें लेने वाले लोग होते हैं ना, उनकी अकल समझ वैसे ही माउफ हो चुकी होती है, उनके सामने हक बयान करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके सामने हक बयान करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी अकलें माउफ होती हैं, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता उनके, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो नेक लोग जब मीडिया पर आते हैं, जो सही मानों में नेक होते हैं, जिनकी परसेंटेज जो है वो शायद 0.05% या 0.01% होती है, वो लोग आते हैं मीडिया के ऊपर, वो सच और हक बयान करते ही नहीं है मीडिया पे आकर के, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ शर है और कोई खैर नहीं है उसके अंदर, कोई खैर नहीं है उसके अंदर, इस वजह से वो हक नहीं बयान करते। हाँ, बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे, कुरान और हदीस की कुछ बातें बयान कर देंगे, ठीक है ना, कुछ नेकी की जो है वो नसीहतें कर देंगे, लेकिन हालात हाजरा के बारे में सच वो नहीं बयान कर सकते। ठीक है ना, वो झूठ भी नहीं बोलते जैसा आपने लिखा, लेकिन पूरा सच भी नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि वो कर नहीं सकते और उनके करने का कोई फायदा भी नहीं होता, उनके करने का कोई फायदा भी नहीं है सच बयान करने का, क्योंकि मीडिया की जो आवाम बैठी हुई देख रही है ना, चाहे वो आप हो, मैं हूं, चाहे वो कोई और हो, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, उसका दिमाग सुन्न हो चुका होता है। ठीक है, इस रियलिटी को माने या ना माने आपकी मर्जी है, लेकिन बेहतर यही है कि मीडिया से अपने आप को हटाएं। भाई बड़े कंफ्यूज हैं आजकल लोग, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया, भाई अल्लाह के बंदे, मीडिया से क्यों खबरें ले रहे हो, मीडिया से क्यों तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग्स ले रहे हो, राइट? दिमाग जो है वो आपका इंतहाई मुंतशिर, इधर से भी खबर, उधर से भी खबर, उधर से भी खबर, इधर से भी खबर, 24 घंटे जो है वो खबरें आई चली जा रही हैं, तो आपका दिमाग किसी काबिल रहेगा, किसी काबिल नहीं रहेगा आपका दिमाग, क्या बात आपके समझ में आएगी, क्या आप जो है वो सच को पहचानेंगे, क्या आप उसके ऊपर अमल करेंगे, किसी काबिल नहीं है आप। ये फितने दज्जाल इतना कामयाब फितना क्यों हो जाएगा, उसकी वजह यही होगी कि इंसानों की अकलें जो हैं वो बिल्कुल मर चुकी होंगी, बल्कि मर चुकी हैं, मर चुकी हैं अकलें, सोच और समझ, राइट, द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, बिल्कुल अकल जो है वो माउफ हो चुकी है। वो क्यों माउफ हो चुकी है, वो इसी इंतशार की वजह से माउफ हो चुकी है। ठीक है, तो मीडिया से क्यों लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं जी हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या हक है क्या गलत है ये, तो ठीक है, अच्छी बात है आपको समझ में नहीं आ रहा भाई, ठीक है, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, बुनियादें दी हुई हैं हमें और महफूज तरीके से दी हुई हैं, उन बुनियादों की तरफ क्यों नहीं लौटते हो, उसके लिए तो टाइम नहीं है, मीडिया के लिए बड़ा टाइम है, सोशल मीडिया के लिए और यूट्यूब के लिए। किसी ने कहा कि मुझे थ्रेट किया जाता था कि ये रिटन लाइंस आपको बोलना होगी, हाँ ऐसा ही है, थ्रेड भी किया जाता है, जिनको नहीं भी थ्रेड किया जाता वो भी वैसे भी, ठीक है, एंड दिस पिच इज नॉट आवर्स, बिल्कुल सही फरमाया आप, ठीक है ना, भाई क्रिकेट के अंदर रहता है ना, क्रिकेट है तो वैसे ही दोनों का खेल, जिन्होंने इसराइल बनाया है ना, फलस्तीनियों को घर से निकाला, वो कौन थी कौम, अंग्रेज, राइट, ब्रिटेन, तो उनका ये खेल है 100%, ठीक है ना, ना इसके अंदर जो है वो सेहत की कोई अच्छाई, ना इसके अंदर जो है वो दीन की कोई कोई खूबी, ठीक है, लेकिन खेल खेल करके हमें तो उसकी सारी चीजें समझ में आ गई हैं, पिच क्या चीज होती है, ठीक है, तो वही हम भी इस्तेमाल करते हैं, आपने तो खाली मुझे कॉपी कर दिया, कि पिच जो है ना वो होती है, अगर बैटिंग की पिच है तो जिनके पास अच्छे बैट्समैन होंगे वही कामयाब होंगे, और अगर बॉलिंग की पिच है तो जिनके पास अच्छे बॉलर्स होंगे वही कामयाब होंगे। भाई ये मीडिया जो है ये मुसलमानों की पिच नहीं है, ये मीडिया ये फुसाक और फुजार की पिच है, इसके ऊपर फासिक और फाजरी कामयाब हो सकता है, इसके ऊपर ईमान वाला कामयाब नहीं हो सकता, तो ईमान वालों को क्या पड़ी हुई है, वो जाकर के मीडिया से जो है वो खबरें ले रहे हैं, मीडिया से जो है वो अपनी समझ ले रहे हैं, अपनी फिक्र ले रहे हैं मीडिया से। क्या पड़ी हुई है ईमान वालों को? नाकामी के अलावा और कुछ नहीं पड़ी हुई है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, ये कहां से एक्सेप्शन हो गए, कहां से एक्सेप्शन हो गए? आपको बात समझ में नहीं आ रही, इतनी देर से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? ठीक है, और से सुना करें, समझने की कोशिश क्या करें, आगे से एक दो अल्फाज नाम लेकर के पूछने की कोई जरूरत नहीं। आगे फरमाते हैं कि कुरान करीम की इस तालीम ने बिर व तकवा, और ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये बड़ी जबरदस्त चीज पढ़ रहे हैं। इस हाजिज के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि जब सूरह मायदा की तफसीर करने का इरादा किया था, रमजानुल मुबारक के शुरू के दिन थे जब हमारी सूरह बनी इसराइल की तफसीर खत्म हुई थी, उस वक्त जो है वो सोच रहा था भाई क्या कौन सी वाली सूरह शुरू करूं, तो अल्लाह ताला ने दिन में डाला कि ये जिल्द नंबर 3 शुरू करते हैं। जिल्द नंबर 3 के अंदर दो बड़ी बड़ी सूरतें, एक सूरह अनआम और दूसरी सूरह मायदा। सूरह अनआम जो है वो औरतों में शुरू करने का इरादा किया, जो कि वहीं पे रमजान की तफसीर का मौजू बन गया, और सूरह मायदा जो है मर्दों में शुरू करने का। हमारे तो वहमो गुमान में नहीं था कि दुनिया के अंदर क्या होने वाला है और क्या हालात बनने वाले हैं, राइट? लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल उस वक्त इस वक्त के हालात के मुताबिक ही सारी की सारी बातें, अगर हम अकल और समझ के साथ इसको पढ़ें, गौर से पढ़ें, तदब्बर करें। अफला यतदब्बरून अल कुरान, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में हमें ललकारते हैं, हमें पुकारते हैं, क्या तुम कुरान में तदब्बर नहीं करते? कब करेंगे तदब्बर? मरने के बाद कब्र में जाके तदब्बर करेंगे? तो तदब्बर करें इस वाली आयत की तफसीर के ऊपर, सब समझ में आ जाएगा। आगे फरमाते हैं कुरान करीम, क्या लिखा हुआ है आपने, मीडिया को प्रोपेगेंडे की माँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारे हजरत यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह शहीद, वो फरमाते थे टीवी जो है ना, ये उम्मुल खबाइस है। टीवी तो उस जमाने की जो ईमान की टीवी, वही जो है वो पूरा का पूरा मीडिया थी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब तो सब कुछ ही टीवी के शक्ल में आ गया है। तो आपने कहा कि प्रोपेगेंडा की माँ है, भाई वो खबाइस की माँ है। सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा बनाकर पेश करने वाला यही मीडिया है। खयानत करने वालों को अमानतदार और अमानतदार को खाइन करार देने वाला भी यही मीडिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीडिया को रुवैबवा के नाम से पुकार कर मीडिया की असलियत से पहले ही आगाह कर दिया था। नबी अलैहिस्सलाम ने मीडिया को रुवैबवा के नाम से पुकारा, ये तो हम अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि इस तरह के हम एक्सप्लिसिट कतई बात नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा लगता है, ये जरूर कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुवैबजा नाम के जो फितने का जिक्र किया था, वो यही सोशल मीडिया के ऊपर और प्रिंट मीडिया और इनके ऊपर आने वाले जो वो है जो तो बातें करते हैं बैठ करके। बहरहाल, तो कुरान करीम के इस तालीम ने रुअब्ज़ा उन लोगों का आ जाता है जो फजूल वही करते हैं। जी, कुरान करीम के इस तालीम ने बिर व तकवा यानी नेकी और खुदा तरसी को असल मेयार बनाया, उसी पर मुस्लिम कौमियत की तामीर खड़ी की। ठीक है, नेकी और खुदा तरसी के ऊपर मुस्लिम कौमियत की तामीर खड़ी की है, इस पर तआवुन व तनासुर की दावत दी है, इसके बिल मुकाबल इस्म व उदवान को सख्त जुर्म करार दिया है, इस पर तआवुन करने से रोका है, बिर व तकवा के दो लफ्ज इख्तियार फरमाए। जमहूर मुफस्सरीन ने बिर के मानी इस जगह फ़िलुल खैरात यानी नेक अमल करार दिए, और तकवा के मानी तर्कुल मुनकरात यानी बुराइयों का तर्क बतलाए। ठीक है ना, यानी बिर का मतलब नेकी के काम करना और तकवा का मतलब नाफरमानी से बचना। ठीक है ना, मुनकरात यानी जिनसे मना किया गया है उनको तर्क करना, ये है तकवा। ठीक है, और लफ्ज इस्म ये मुतलकन गुनाह और मासियत की मानी में, यानी ये बहुत ही एब्सोल्यूट टर्म है जिसके अंदर हर किस्म के गुनाह और मासियत दाखिल हो जाती हैं, ख्वाह वो हुकूक से मुतअल्लिक हो या इबादात से, यानी हुकूकुल्लाह से मुतअल्लिक हो या हुकूकुल इबाद से मुतअल्लिक हो, उस वो सब का सब इस्म के अंदर आ जाता है। और उदवान के लफ्जी मानी हद से तजावज करने हैं, मुराद इससे जुल्म व जौर है। ठीक है, मतलब ये है कि वैसे तो पहली टर्म के अंदर ही दूसरी टर्म कवर्ड है, तकवा बिर के अंदर कवर्ड है, उदवान इस्म के अंदर कवर्ड है। ठीक है, ऑलरेडी कवर्ड है, दूसरी टर्म पहली वाली टर्म के अंदर। लेकिन जब कोई चीज बहुत ज्यादा अहम होती है, अगरचे कि वो सबसेट हो, लेकिन उसकी अहमियत की वजह से उसको अलग से भी मेंशन कर दिया जाता है, अलग से भी मेंशन कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से तकवा को अलग से मेंशन कर दिया बिर का लफ्ज जिक्र करने के बाद भी। उसी तरीके से जुल्म और जौर जो है उसको अलग से मेंशन कर दिया इस्म के बाद भी, हालांकि जुल्म इज इक्वल टू इस्म। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों अल्फाज में। हाँ, थोड़ी आप जाएं तफसीर के अंदर और शराजामी उठा करके देखें तो शायद आपको कुछ फर्क भी नजर आ जाए इनके दरमियान। लेकिन गुना, जुल्म भी गुना है और इस्म जो है वो भी गुना के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, बिर व तकवा पर तआवुन और इमदाद कर, यानी एक और भी वजह होती है कि ज्यादा अहमियत की वजह से एक टर्म को आप अलग से भी मेंशन कर देते हैं, हालांकि वो पहले से कवर्ड थी। और एक और भी होती है वजह कि कहीं किसी के जहन से जो है ना वो कोई चीज, जो अहम चीज है वो कहीं यानी मिस आउट ना हो जाए, मिस आउट ना हो जाए। सो मिसाल के तौर पर बिर, तो कोई ये समझे जैसे कि हम भी यही समझते हैं कि भाई वो जो नेकी के काम करने हैं, नमाजें पढ़नी हैं, सदके खैरात देने हैं, और जो है वो हज उमरे करने हैं, है ना, तो इनके अंदर एक दूसरे का तआवुन करना चाहिए। ठीक है, गुनाह से बचने में तआवुन करना, ये क्या चीज होती है भाई? गुनाह से बचने में कैसे तआवुन की, ये कौन सी चीज होती है? उस तरफ ध्यान ना जाए किसी का। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो मिस आउट करने वाला फैक्टर है ना, इसकी वजह से हमें बता दिया कि नहीं, तकवा के ऊपर भी मदद की जरूरत पड़ती है, मदद की जरूरत पड़ती है, तो इसमें भी मदद करो एक दूसरे की। क्या मतलब? सबसे अहम तो अपनी औलाद के लिए, सबसे अहम तो अपनी औलाद के लिए कि अपनी औलाद को अच्छा माहौल दो, बुरे माहौल से बचाओ, ये उनकी मदद होगी तकवा के अंदर, मदद होगी तकवा के अंदर। ये सफिशिएंट नहीं है कि तुम जुम्मे के दिन हाथ पकड़ के अपने बच्चे को जो है वो जुमा पढ़ने के लिए ले जाओ, और संडे के दिन जो है वो, अगर तुम अमेरिका जाओ, बल्कि तो हर संडे हर जगह ही हॉलिडे होते हैं ना, ठीक है, सवाई सऊदी अरब रह गया बस अभी, तो संडे के दिन जो है वो हाथ पकड़ के संडे स्कूल ले जाओ अपने बच्चे को, और बाकी जो 6 दिन है या बाकी जो 5 दिन है उसके, उन दिनों में गलाजत भरे माहौल के अंदर अपने बच्चों को भेज दो, और फिर उनसे कहो बच्चों तुमने गंदा काम नहीं करना है, बच्चों तुमने जो है वो गंदे लोगों से दोस्ती नहीं बनानी है, तुमने बैड वर्ड्स नहीं सीखने हैं, तुमने वीडियो गेम्स नहीं खेलने हैं। अगर जो लोग वीडियो गेम वो खराब समझते हैं तो बच्चों को कहते हैं वीडियो गेम नहीं खेलने हैं तुमने, तुमने ये गंदा काम नहीं करना, तुमने वो तक गंदा काम नहीं करना, लेकिन मदद नहीं करी उनकी, अपने बच्चों की मदद नहीं करी तकवा के लिए, कि उनको बुरे माहौल से बचाना भी था भाई। सिर्फ जो है वो जुम्मे की नमाज पढ़ने ले जाना या कभी जो है वो तबलीगी इज्तिमा में ले जाना, दिस वॉज नॉट एनफ। बाकी 5 दिन आपने उसकी मदद क्यों नहीं करी, बल्कि उसको धक्के क्यों दे दिए इतने गंदे माहौल के अंदर? क्यों धक्के दे दिए अपनी बेटी को उस गलीज माहौल के अंदर, तालीम के जेवर के नाम पर? तो तुमने अपनी औलाद की मदद नहीं करी, दूसरों की क्या मदद करोगे तकवा के ऊपर? हम तो इधर ही फेल हो गए, अल्लाह ताला के हुक्म की अदायगी के अंदर इधर ही फेल हो गए हम, अपनी औलाद के मामले में ही फेल हो गए, दूसरों के मामले में क्या करेंगे? ठीक है, तो तकवा को अलग से जिक्र कर दिया। सिर्फ ये नहीं कि उमरा करने हर हद 2-3 हफ्ते के बाद उमरा करने भागे चले जा रहे हैं, ये काफी नहीं है, ये तआवुनु अलल बिर तो कहलाएगा, ये तआवुनु अलल तकवा नहीं कहलाएगा। ठीक है, बिर व तकवा पर तआवुन और इमदाद करने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दाल अलल खैरी कफाइली, यानी जो शख्स किसी को नेकी का रास्ता बता दे तो उसका सवाब ऐसा ही है जैसे उस नेकी को उसने खुद किया। कितना अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं कि हमें सवाब दें, कितना चाहता है हमारा परवरदिगार कि हमें जन्नत की करेंसी से लोड कर दे, भर दे हमारी पॉकेट्स को जन्नत की करेंसी से, ताकि जन्नत में जाएं और उसके बदले हम बड़ी बड़ी नेमतें खरीदें। कितना रब्बुल इज्जत चाहता है। तो चाहने का क्या मतलब कि खुद तुम नहीं कर पा रहे, किसी को तुम उसकी तरफ तआवुन कर दो, किसी को तुम डायरेक्ट कर दो नेकी की तरफ, किसी को नेकी का माहौल प्रोवाइड कर दो, किसी को नेकी के माहौल की तरफ बुलाने का सबब बन जाओ। उसकी जितनी नेकियां होंगी वो सब की सब मैं तुम्हें भी देना शुरू कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। कितना करीम है हमारा परवरदिगार, कितना रहीम है, कितना शफीक है हमारा परवरदिगार, राइट, कितना देने वाला है हमारा परवरदिगार, और फिर भी हम लेने के लिए तैयार ना हो, राइट, हम लेने के लिए तैयार ना हो, तो इसका क्या किया जाए फिर। हमें तो चाहिए हम भाग भाग के खुद भी नेकी करें, और जो हम खुद नहीं कर सकते हैं कम से कम दूसरों को तो उसकी तरफ गाइड करें, राइट, अल्लाह ताला के खजानों को लूटें, लूटें, कमी नहीं होगी अल्लाह के खजानों में, कोई कमी नहीं होगी अल्लाह के खजानों में। इतनी बड़ी जन्नत है, इतनी बड़ी जन्नत है, हमारे हमारे तसव्वुर की इंतहा भी उस जन्नत की कमतर चीज को भी नहीं पा सकती, हमारे तसव्वुर की इंतहा भी हो जाए। तो फरमाया कि ये हदीस इब्ने कसीर ने हवाले बाजार नकल फरमाई है, और सही बुखारी में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स लोगों को हिदायत और नेकी की तरफ दावत दे, तो जितने आदमी उसकी दावत पर नेक अमल करेंगे उन सब की बराबर उसको भी सवाब मिलेगा, बगैर इसके कि उन लोगों के सवाब में से कुछ कम किया जाए। जो खुद नेकी कर रहा है तो उसको उसकी नेकी का पूरा पूरा सवाब मिलेगा, कमी नहीं की जाएगी। और जिस शख्स ने लोगों को किसी गुमराही या गुनाह की तरफ बुलाया, ये भी याद रखें, गुमराही या गुनाह की तरफ बुलाया, तो जितने लोग उसके बुलाने से गुनाह में मुब्तला हुए उन सब के गुनाहों के बराबर उसको भी गुनाह, बगैर इसके कि उन गुनाहों में कुछ कमी की जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हम कैसे चीजों को फॉरवर्ड करते हैं लोगों के पास सोशल मीडिया के ऊपर, और वैसे अपनी बातों के अंदर हम कैसे बुराइयों के अंदर लोगों को मुलव्वस करते हैं, राइट, और फिर वो उससे आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, हम तो मर जाएंगे लेकिन हमारा ये गुनाह जारिया ये जारी रहेगा इस दुनिया के अंदर, और कब्र के अंदर अजाब पहुंचता रहेगा, और जहन्नम के अंदर अजाब पहुंचता रहेगा। इस सोशल मीडिया के आने के बाद समझ में आता है कि कैसे कोई ईमान वाला जहन्नुम में पहुंचेगा, कैसे कोई ईमान वाला जहन्नुम में पहुंचेगा, जब अल्लाह ताला की रहमत के 99 हिस्से अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए रखे हुए, जबकि ईमान वाले को कांटा चुभता है तो उसके गुनाह बख्शे जाते हैं, कब्र में भी अजाब होगा तो उसके गुनाह बख्शे जाएंगे, आखिरत के दिन की तकलीफें होंगी तो उसके गुनाह बख्शे जाएंगे, फिर भी ऐसे ईमान वाले होंगे जो कि जहन्नुम में पहुंच जाए, और जहन्नुम के अजाब में जलते रहने के कई सालों के बाद फिर उसके बाद जहन्नुम से निकाले जाएं। ये कैसे हो सकता है, नहीं समझ में आती थी ये बात, लेकिन अब सोशल मीडिया आया है तो ये बात समझने भी आसान हो गई है कि ईमान वाला जब सोशल मीडिया के ऊपर चीजों को वायरल करता है अब उस गुनाह की कोई हद नहीं रहती, उस गुनाह की कोई हद नहीं रहती, क्योंकि अगला बंदा बंदा आगे फॉरवर्ड करता है, वो आगे फॉरवर्ड करता है, वो आगे फॉरवर्ड करता है, जितने लोग उस शक्ल को देखते हैं बदनजरी के मुर्तकिब होते हैं, जितने लोग उस मैसेज में मौजूद मौसीकी को सुनते हैं वो कानों के गुनाह का मुर्तकिब होते हैं, जितने लोग उस फजूल किस्म के घटिया और बेहयाई की बात को सुन करके खुश होते हैं वो सब के सब गुनाह के मुर्तकिब होते हैं, और जो झूठ खबर जो है वो दुनिया के अंदर फैला रहे होते हैं बगैर किसी तहकीक के वो सब के सब गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं, और ये सारा का सारा गुनाह जो है वो इस इनिशिएट करने वाले को पहुंच रहा होता है। अब इस गुनाह का क्या हिसाब किया जा सकता है, दुनिया के कैलकुलेटर्स तो क्या सुपर कंप्यूटर्स भी उसका हिसाब करने का के मजाज नहीं हो सकते, दुनिया के सुपर कंप्यूटर्स भी ऐसे गुनाह का हिसाब नहीं कर सकते, ये अल्लाह ताला ही का कंप्यूटर है, अल्लाह ताला ही का हिसाब किताब है जो कि ऐसी नेकियों का भी हिसाब किताब रखता है और ऐसे गुनाहों का भी हिसाब किताब रखता है। तो हमें तौबा करनी चाहिए अभी और इसी वक्त, हमें तौबा करनी है ऐसी चीजों को सोशल मीडिया के ऊपर फॉरवर्ड करने से, जिनके अंदर औरतों की शक्लें हों, जिनके अंदर गाने हों, जिनके अंदर फजूल किस्म की गोई हो, बेहयाई की बातें हों, हरगिज़ फॉरवर्ड नहीं करना है, बल्कि अल्लाह से माफी मांगनी है। अल्लाह, अब तक जो कुछ मैंने कर लिया है, मैं उसके ऊपर नादिम हूं, शर्मिंदा हूं, आपसे माफी मांगती हूं, माफी मांगता हूं। अल्लाह आप मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन करीमुन तुहिब्बुल अफवा फाफु अन्नी या करीम। आप तो माफ करके पसंद, आप माफी को पसंद करते हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए या रब, आइंदा मैं नहीं करूंगा ऐसा काम, आइंदा मैं नहीं करूंगा ऐसा काम। अल्लाह ताला से इसी वक्त अभी क्लास खत्म होने से पहले, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता कि क्लास खत्म होने तक भी हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सडन डेथ, इतना वाइड स्प्रेड फिनोमिना इस वक्त हुआ हुआ है, सडन डेथ। बात करते करते बंदा गिरता है और फौत हो जाता है, पहले नहीं था ये इतना ज्यादा फिनोमिना। ठीक है, तो सडन डेथ से भी डरना चाहिए और फौरन तौबा कर लेनी चाहिए, आइंदा नहीं करेंगे ये काम। इब्ने कसीर ने बरवायत तिब्रानी नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी जालिम के साथ उसकी मदद करने के लिए चला, वो इस्लाम से निकल गया, वो इस्लाम से निकल गया, खारिज अल इस्लाम। तो भाई मदद करने से पहले जो है ना, एक तो सोच लेना चाहिए हम किसकी मदद कर रहे हैं। आज के हिसाब से तो क्योंकि हमारा इल्म इंतहाई कम है और झूठ और फरेब इंतहाई फैला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, हर जगह झूठ फरेब फैला हुआ है, तो इस वजह से किसी की मदद करने से पहले 100 मरतबा सोच रहे हैं कि किसकी मदद कर रहे हैं, क्या वो वाकई मजलूम है जिसकी आप मदद करने के लिए चल रहे हैं उसके साथ। हर बंदा झूठ बोलता है, अपने आप को मजलूम साबित कर देता है, खुसूसन खानदानों के अंदर, राइट। खानदानों के अंदर हर बंदा अपनी मजलूमियत का खूब जो है वो राग अलापता है। ठीक है, ससुराल तो जालिम बाय डिफॉल्ट, ससुराल का हर बंदा अब जालिम है, सास जालिम है, ससुर जालिम है, शौहर जालिम है, हालांकि आधे से ज्यादा जुल्म अक्सर जो है वो बीवी का अपना किया हुआ होता है, लेकिन आकर के वो रोना रोती है, कस्बे बहाती है, चीख चिल्ला करती है और गैरत दिलाती है, और जो है वो उसको मजलूम समझ लिया जाता है, अब उसकी मदद के लिए आस्तीने चढ़ा करके तैयार सारे के सारे, राइट। तो मजलूम की मदद करने के ऊपर फायदा है, जालिम की मदद करने के ऊपर इस्लाम से निकल जाते हैं भाई, कोई मामूली बात है ये इस्लाम से निकल जाना, बाकी क्या बचेगा फिर उसके बाद। ठीक है, तो इस तरह की जो हदीसें होती हैं ना कि वो हम में से नहीं है, इस्लाम से निकल गया, तो इसका मतलब ये होता है कि सारी जिंदगी अपने आप को मुसलमान समझता रहा, लेकिन मौत इसको इस्लाम पर नहीं आएगी, मौत इस्लाम पर नहीं आएगी, मौत से पहले पहले अल्लाह ताला इसको निकलवा देंगे, सराहतन भी निकलवा देंगे, पहले तो अमलन निकला था ना, फिर उसके बाद जो है वो जुबान से भी ऐसी कोई हरकत कर जाएगा कि मरने से पहले इसका नाम खारिज हो जाएगा, बेशक किसी को पता लगे ना लगे, उसे क्या फर्क पड़ता है, किसी ने हिसाब के थोड़ी करना है, हिसाब तो अल्लाह ने करना है, अल्लाह ताला हुज्जत बना देते हैं ऐसे शख्स के खिलाफ। तो फरमाया कि जो शख्स किसी जालिम के साथ उसकी मदद करने के लिए चला, वो इस्लाम से निकल गया, और इसी तरीके से जो है ना वो वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर भी जो हम है ना जो क्या कहते हैं साउंडिंग द ट्रम्पेट, ठीक है, तो वो भी सोच समझ के करना चाहिए, ये ना हो क्या ऐसी चढ़ चढ़ करके बातें कर रहे हैं, मीडिया पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद फंस जाते हैं, फिर बोलना ही पड़ता है कुछ उल्टी सीधी बात, तो ऐसा ना हो कि उल्टी सीधी बात जो आपके अपनी हरकतों की वजह से आप मीडिया पर आए हैं, और आपको कोई मजबूरी तो नहीं थी मीडिया पे आने की, अपनी हरकतों की वजह से मीडिया पर आए हैं, अब उसके बाद मीडिया पे आके फंस गए हैं, अब फंसने के बाद जो है वो बोले चले आ रहे हैं जो भी उल्टा सीधा दिमाग में आ रहा है या समझ में आ रहा है, या जो है वो किसी ने जो है वो आपको गन पॉइंट के ऊपर बुलवाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो भाई इस्लाम खतरे में ना पड़ जाए कहीं उन चक्करों की वजह से, तो छपने की जरूरत नहीं है, छुपने की ज्यादा जरूरत है इस वक्त। इसी पर सलफ सालेहीन ने जालिम बादशाहों की मुलाजिमत और कोई ओहदा कबूल करने से सख्त एतराज किया कि इसमें उनके जुल्म की इमदाद व इआनत है। तो तकवा की सबसे अच्छा मुकाम तो यही है कि एहतराज करो, जैसे कि हमारे अकाबरीन और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि जी छुपते फिरते थे, भागते थे, उनको ओहदे के लिए बुलाया जाता था। हालांकि उस जमाने के जो बादशाह होते थे वो बहुत बहुत ज्यादा नेक होते थे और मुत्तकी होते थे, लेकिन फिर भी जो है वो बचने की कोशिश करते थे। ठीक है, हाँ, कोई हुक्म दे दे, कोई बड़ा हुक्म दे, मुत्तकी परहेजगार खुद जो के बचता है, लेकिन वो अगर किसी अपने छोटे को हुक्म दे कि आप जो है वो कबूल करें, तो अब ये किसी तमा और लालच की वजह से नहीं होगा बल्कि बड़े के हुक्म की वजह से होगा। जैसे माजी के अंदर हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म फरमाया कि आप काजी का ओहदा कबूल करें, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेख के कहने के ऊपर उस ओहदे को कबूल किया था। उसी तरीके से जमाने करीब के अंदर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातहू, उनके मशाइख ने हुक्म फरमाया था कि आप ओहदा कबूल करें, वरना वो नहीं चाहते थे कबूल करना। आज भी उनकी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि मैं नहीं चाहता था लेकिन मेरे शेख ने मुझे हुक्म किया था, और भी सारे उलमा और मशाइख ने मिलकर के उनको सिफारिश करी थी कि आप इनको हुक्म करें, उन्होंने हुक्म किया था, तब उन्होंने ओहदा कबूल किया था। और यही मामला जो है वो उलमाए हक का आज भी चला आ रहा है। तो वो मसनद की खातिर या जो है वो हुकूमत की खातिर या पर्क्स की खातिर वो ओहदा कबूल नहीं कर रहे होते, लेकिन इस हुक्म की वजह से कबूल कर रहे होते हैं। ऐसा अभी भी होता है कि अगर वो ना करते तो कोई और जालिम या ना अहल जगह ले लेता, ऐसा फिर इज्तिहाद वाला मामला होता है। लेकिन बड़े जो हुक्म करते हैं वो भी इसी वजह से ही हुक्म करते हैं कि अगर वो ना लेंगे तो फिर कोई वाकई जालिम और ऐसा ना अहल शख्स जो है वो उस जगह को ले लेगा, और फिर उसने जो फसाद मचाना है उस फसाद के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस वजह से वो अपने किसी सबॉर्डिनेट को, अपने किसी मुरीद को या अपने किसी शागिर्द को हुक्म करते हैं कि आप इस ओहदे को कबूल कर। ठीक है, तो इसमें उनके जुल्म की इमदाद व इआनत है। तफसीर रूहुल मानी में आयत करीमा फलन अकून ज़हीरन लिलमुजरिमीन के तहत ये हदीस नकल की है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के रोज आवाज दी जाएगी कि कहाँ हैं जालिम लोग और उनके मददगार, यहाँ तक कि वो लोग जिन्होंने जालिमों के दवात और कलम को दुरुस्त किया है, वो भी सब एक लोहे के ताबूत में जमा करके जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे। कलम और दवात को दुरुस्त करने का मतलब कि सबसे कम दर्जे की मदद जिन्होंने करी है जालिमों, उनको भी जो है ना वो जालिमों के साथ ही उनका हशर किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक अहम नुक्ता समझ करके सुन करके फिर उसके बाद हम क्लास खत्म कर देते हैं, वो ये है कि ये वो लोग होंगे कि जिनके दिल के अंदर कोई नदामत और शर्मिंदगी और माफी का जज्बा नहीं होगा, अल्लाह ताला से माफी मांगने का जज्बा नहीं होगा, बल्कि वो अपने दिल की लगन के साथ और इसको सही समझते हुए जालिम की मदद कर रहे होंगे, चाहे किस दर्जे की भी मदद कर सकें। वो तो फिर इंसान के अपने अपने हालात के ऊपर होते हैं ना कि वो कोई जो है वो बहुत बड़े लेवल पे मदद कर सकता है, उसके हालात ऐसे हैं, किसी के हालात ऐसे नहीं है तो वो कम दर्जे के ऊपर मदद कर सकता है, लेकिन चाहता तो है ना मदद करने वाला। ये चाहत जो है ना दिल की, अल्लाह ताला के यहाँ इसकी इसका हिसाब किताब, चाहत का हिसाब किताब है। इसी वजह से ये जो नुक्ता है बड़ा अहम नुक्ता है कि एक ईमान वाला जो नेक अमल करता है तो उसने तो महदूद नेक अमल किए होते, तो उसको हमेशा हमेशा की जन्नत क्यों मिलेगी? और काफिर ने भी जो कुफर किया होता है और जो उद्वान किया होता है और इसम किया होता है, उसने तो एक महदूद जिंदगी के अंदर उसने कुफर किया होता है ना, तो उसको हमेशा हमेशा की जहन्नुम क्यों क्यों मिलेगी? उसकी वजह यही है कि ईमान वाले की नीयत ये थी कि अगर मुझे अनलिमिटेड लाइफ मिलेगी तो मैं हमेशा ईमान पर रहूंगा, इस वजह से उसको हमेशा की जन्नत मिलेगी। और काफिर की ये नीयत थी ही नहीं कि मैं कल को तौबा करके मुसलमान बन जाऊंगा, उसकी ये थी कि जितनी मेरी जिंदगी है मैंने तो कुफर पर ही रहना है, मुझे तो इनकार पर ही रहना है, तो उसको हमेशा हमेशा की जहन्नुम मिलेगी। तो किस बुनियाद पर अल्लाह ताला ने हमेशा की जन्नत और हमेशा की जहन्नुम का फैसला किया? दिल की चाहत के ऊपर, दिल की नीयत के ऊपर। तो दिस इज व्हाट काउंट्स। तो इसी तरीके से जालिम की मदद करी है दिल की चाहत के साथ, चाहे कलम दवात ही दुरुस्त करने के लिए मदद क्यों ना किए, उसके साथ भी वैसे ही मामला होगा जैसे कि उस जुल्म करने वाले के साथ मामला। तो अल्लाह ताला हम सबको सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें बात की समझ और अमल के ऊपर उभारे और हमारे लिए अमल करना आसान फरमा दे, और गलत फहमियों से निकल करके और गलत फहमियों के किन जराए की वजह से जिनके अंदर हमने अपने आप को खुद अपनी मर्जी से और अपनी चाहत के साथ उन जराए के अंदर जो है वो डुबाया हुआ है, अल्लाह ताला हमें उनसे अपने आप को निकालने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।